आहान अपने भाई आयुष को लेने हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वहीं चाहत अपनी माँ से मिलने मित्तल हॉस्पिटल आई हुई थी। आहान ने ही उसे वहाँ पर छोड़ा था। चाहत हॉस्पिटल आई थी तब उसकी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, इस वजह चाहत उनसे मिल नहीं पाई। निशा का इंतज़ार करते हुए चाहत और श्रद्धा बाहर वेटिंग रूम में बैठकर बातें कर रही थीं। पार्वती जी अंदर रूम में आराम कर रही थीं। चाहत ने उदास स्वर में कहा, थोड़े टाइम में कितना कुछ बदल गया ना। एक हफ्ते पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक मम्मा की तबीयत खराब होना और फिर ये सब। बोलते हुए चाहत ने अपना सिर श्रद्धा के कंधे पर रख दिया था। उसे इस वक्त सच में किसी के सहारे की ज़रूरत थी। श्रद्धा ने चाहत को सहलाते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, काफ़ी कुछ बदल गया, लेकिन बदलाव हमारे बस में कहाँ होता है। तुम परेशान मत हो, आंटी ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट आहान ओबेरॉय के आने से मुझे एक होप मिली है। हम पैसों को लेकर बेफिक्र हो गए हैं, यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, सो जस्ट बी पॉजिटिव। चाहत ने श्रद्धा की बात पर हामी भरी और आगे कुछ नहीं कहा। श्रद्धा ने महसूस किया कि वो जब भी चाहत के सामने आहान का नाम लेती थी तब उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। अब भी कुछ वैसा ही हुआ था। आहान का नाम आते ही चाहत के चेहरे पर उदासी थी। आज वो दोनों अकेली थी तो श्रद्धा को पूछने का भी मौका मिल गया। श्रद्धा ने धीरे से कहा, तुम हमेशा से कुछ ज़्यादा ही मेंटल प्रेशर हैंडल करती हो, इस बार भी करना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारी हालत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे और आहान के बीच आखिर रिश्ता क्या है? तुम ठीक से आंटी से मिलने हॉस्पिटल तक नहीं आती, और मैंने कल अंकल से बात की थी, उन्होंने बताया कि तुम आजकल उनके घर पर नहीं रहती। क्या तुम और आहान साथ में हो? श्रद्धा ने सीधे सीधे सब कुछ पूछ लिया था। श्रद्धा के पूछने पर कुछ पल के लिए चाहत चुप हो गई। उसका चेहरा ऐसे हो गया था मानो उसकी सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, हाँ मैं आजकल आहान के साथ ही रह रही हूँ, काम काफ़ी ज़्यादा होता है, मुझे उनके पैसे चुकाने हैं तो मैं ओवरटाइम कर रही हूँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे देर तक काम करने की आदत है। श्रद्धा ने आसानी से चाहत की बात पर यकीन कर लिया। वो मन ही मन में आहान और चाहत को एक साथ इमेजिन करने लगी। चाहत के दिल की बात जानने के लिए श्रद्धा ने पूछा, अच्छा चाहत, तुम्हें याद है कि हम स्कूल की लाइब्रेरी में काफ़ी बार रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते थे, कई इंटरनेशनल शोज़ भी साथ में देखे हैं, जहाँ एक अमीर इंसान को एक नॉर्मल सी सीधी साधी दिखने वाली खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, फिर दोनों साथ में हंसी खुशी रहते हैं। तुम आहान ओबेरॉय को लेकर क्या सोचती हो? जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरे दिल में उसी बिजनेसमैन का ख्याल आ जाता है जो दिखने में काफ़ी हैंडसम और अच्छा होता है, फिर उसे तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार हो जाता है। आहान तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है, पहले जॉब भिजवाना तो अब आंटी का इलाज करवाना, मुझे तो ऐसे लगता है उसे तुमसे प्यार हो गया है। श्रद्धा ने काफ़ी सपने बुन लिए थे। वहीं श्रद्धा की बात सुनकर चाहत ने जल्दी से अपना सिर उसके कंधे से हटाया और उसकी तरफ घूरते हुए देखकर कहा, ये सब नॉवेल्स और मूवीज़ में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। मैंने तुमसे इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की थी, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, और तुम आहान ओबेरॉय को अच्छे से जानती तो हो, उसका नाम इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है, जबकि मैंने तो अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, टॉप करना तो दूर की बात है, मैं तो ठीक से पास हो जाऊँ वही मेरे लिए बड़ी बात है, वो बस मूवीज़ में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसे परफेक्ट लड़कों को परफेक्ट लड़कियाँ ही पसंद आती हैं। तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो बस इमेजिन कर रही थी, प्यार कोई हैसियत और इंटेलिजेंस देखकर तो होता नहीं, शक्ल और दिल देखकर होता है, और उन दोनों में ही तू काफ़ी अच्छी है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आहान ओबेरॉय को तुमसे सच्चा वाला प्यार हो जाए, फिर शायद फेरी टेल भी सच हो जाए। बाय द वे वो बहुत हैंडसम है, श्रद्धा ने ड्रामेटिक वे में कहा, बोलते हुए उसने हाथ तक जोड़ लिए थे। आहान की सच्चाई से अनजान श्रद्धा आहान और चाहत का साथ मांग रही थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो अनजाने में चाहत के लिए एक नई मुसीबत ही खड़ी कर रही है। चाहत नहीं चाहती थी कि श्रद्धा इस बारे में और आगे सोचे, इसलिए उसने जल्दी से श्रद्धा के हाथों को नीचे किया और उसे हल्का सा मारते हुए कहा, देखो प्यार से समझा रही हूँ, आगे से ऐसी उल्टी सीधी बातें मेरे सामने मत करना, गलती से भी उसने सुन लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, वो मेरा बॉस है और कुछ नहीं। श्रद्धा ने उसकी बात पर हामी भरी। उसकी नानी पार्वती जी कमरे में आराम कर रही थी, वो नींद से जागने के बाद श्रद्धा और चाहत की तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर श्रद्धा ने धीरे से कहा, तुम्हें अपने मामा से बात कर लेनी चाहिए, तुम नानी और निशा आंटी की जिम्मेदारी एक साथ नहीं संभाल पाओगी, नानी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जानती हूँ, लेकिन उनसे बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं हर महीने उन्हें नानी के लिए पैसे भेजूं, तब ज़रूर वो नानी को अपने पास रख सकते हैं, उन्हें पैसे भेजने से अच्छा है कि मैं ही नानी को अपने साथ रख लूं, कम से कम मेरे जॉब पर जाने पर वो माँ का ख्याल तो रख लेंगे। चाहत ने तभी आवाज़ में जवाब दिया। पार्वती के पास आते ही उन दोनों ने बातें करना बंद कर दिया। निशा को थेरेपी रूम में गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, तो पार्वती जी ने पूछा, पिछली बार तो 2 से 3 घंटे में वापस आ गई थी, लेकिन इस बार काफ़ी वक्त हो गया है, 4 घंटे होने को आए हैं, लेकिन निशा को अब तक बाहर लेकर नहीं आए हैं। चाहत बेटा, जरा जाकर पता तो लगा, ना जाने क्यों दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। नानी आप घबराइए मत, इस तरह के ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, अब हम निशा आंटी को ठीक करके ही घर लेकर जाएंगे, श्रद्धा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। पार्वती जी ने भी फिर आगे ज्यादा नहीं पूछा, वो उनके पास बेंच पर आकर बैठ गई थी। चाहत बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी, आहान के आने का समय हो गया था, लेकिन इतना टाइम वहां पर बिताने के बाद भी वो निशा से नहीं मिल पाई थी। चाहत निशा से भी मिलना चाहती थी। चाहत अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आहान वहां पर आयुष के साथ में पहुंचा। चाहत को देखते ही आयुष तुरंत उसे पहचान गया। उसने धीरे से आहान से कहा, ये तो वही वेट्रेस है ना जिसके लिए आपने इतना तमाशा लगाया था। ओह, तो ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तभी आपने इसके लिए वो सब किया था। आपकी चॉइस कमाल की है, मेरी भाभी वाकई काफी खूबसूरत है। हाँ, ये वही है, और ये कोई प्रोफेशनल वेट्रेस नहीं है। इसके सामने इसे मेरी गर्लफ्रेंड कहकर मत बुलाना, वरना ये नाराज हो जाएगी। चलो अब अंदर चलते हैं, इसकी मॉम बीमार है और इस हॉस्पिटल में है। चाहत के पास जाने से पहले आहान ने इसे थोड़ा बहुत बता दिया था। आहान और आयुष चाहत के पास पहुंचे। उसे वहां वेटिंग एरिया में देखकर आहान ने हैरानी से पूछा, तुम अपनी मम्मा से मिली हो ना, और तुम यहाँ वेटिंग एरिया में क्यों बैठी हो? क्या उन्हें किसी तरह के टेस्ट के लिए ले जाया गया है? नहीं, आज उनकी थेरेपी का पहला सेशन है, चाहत के बजाय श्रद्धा ने जवाब दिया। आहान ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर चाहत की तरफ देखा। चाहत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो उसके पास बैठा और उसका हाथ सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ घर पर चलो, मुझे तुमसे काम है, उनसे तुम कल मिलने आ जाना, वो बिल्कुल ठीक है।
लेकिन मैं चाहती थी मिस्टर ओबेरॉय चाहत आज हॉस्पिटल में ही रुक जाएं तो ज्यादा सही रहता। निशा आंटी को इस वक्त अपने किसी खास के सपोर्ट की जरूरत है, और चाहत से खास उनके लिए कोई नहीं हो सकता, श्रद्धा ने बीच में बोलते हुए कहा। हालांकि आहान को ये पसंद नहीं आया, लेकिन चाहत को मना करके वो ना तो चाहत का दिल दुखाना चाहता था और ना ही ये साबित करना चाहता था कि आहान को चाहत की माँ की परवाह नहीं है। आहान ने चाहत की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है, तुम आज रात यहाँ पर रुक सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। आहान अब चाहत के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत चाहत को वहाँ रुकने के लिए हाँ कह दी थी। आहान के हाँ कहने के बावजूद चाहत वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, वो उसकी छूट का गलत फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहती थी। उसे कुछ भी कहने से पहले चाहत की नज़र आयुष की तरफ गई, जो उसके पास खड़ा था। आयुष और चाहत की नज़रें मिली तो आयुष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ ऊपर करके उसे हेलो कहा। आयुष को देखते ही चाहत समझ गई कि वो आहान का छोटा भाई है, जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। फिर उसने आहान से कहा, नहीं, मुझे घर ही जाना है, मैं वैसे भी यहाँ बैठकर बोर हो गई हूँ, यहाँ रुकने के चक्कर में मेरा काफ़ी काम भी मिस हो गया। चाहत ने वहाँ रुकने से मना कर दिया। फिर उसने श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, तुम संभाल लोगी ना यहाँ सब कुछ? इसमें पूछने की क्या बात है, तुम आराम से अपने काम पर फोकस करो, आंटी और नानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं, आहान बोला। वो डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने ही वाला था कि तभी डॉक्टर की टीम उस तरफ ही आ रही थी। उनके चेहरे उतरे हुए थे। हेड डॉक्टर आहान के पास आया और धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, हम मिसेस शर्मा को बचा नहीं पाए, थेरेपी के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और उसकी सडन डेथ हो गई। दिस इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, बहुत रेयर ही केसेस में ऐसा होता है। डॉक्टर ने निशा की मौत होने की बात कही। निशा की मौत का सुनते ही वहां खड़े हर एक शख्स को एक बड़ा झटका लगा। पार्वती जी चिल्लाते हुए वहां बेंच पर बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगीं। श्रद्धा की आंखों में भी आंसू थे। आयुष ने भी निशा की मौत होने का सुना तो उसे भी बुरा महसूस हो रहा था। आहान को भी दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चाहत से नसरे मिला सके। फिर भी उसने चाहत की तरफ देखा तो वो बेहोश होकर नीचे गिरी हुई थी। डॉल, आहान घबराकर जोर से चिल्लाया, वो चाहत की हालत से काफ़ी घबरा गया था। मैं अपनी एक और नई कहानी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पॉकेट पर रीच नहीं बनने की वजह से कहानी जल्दी बंद कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी इश्का वाली कहानी फिर से शुरू हो पाएगी, तो प्लीज़ आप मेरी नई कहानी को सपोर्ट करिएगा और उसे पढ़िएगा। अगर आपको अब तक मेरी बाकी कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो उम्मीद है वो भी अच्छी ही लगेगी। एक प्रोमो डाल रही हूँ, कल तक कहानी लाइव हो जाएगी, तो लिंक भी दे दूँगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कहानी का टाइटल इनोसेंट रोज होगा। एज यूजुअल हमारा हीरो माफिया होगा। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे माफिया की स्टोरी बहुत पसंद है, विंचेंजो देखने के बाद तो खासकर। चलिए नो मोर टॉक्स, प्रोमो एंजॉय कीजिए। ये मुंबई शहर था। हल्की हवाओं के बीच ब्लैक ब्रांडेड सूट पहने एक लड़का किसी मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा था। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी, हाइट तकरीबन 6 फीट के करीब, ग्रे आइज और फिट मस्कुलर बॉडी। उसके गोरे चेहरे पर गुस्सा था। उसके हाथों में एक बुके था जिसके फूलों को तोड़कर वो फेंक रहा था। चेहरे से वो डिटर्मिंड और कॉन्फिडेंट दिख रहा था, पर पोस्टर से झलक रहा था उसने अपने दिल में काफ़ी कुछ छुपा रखा है। जब सारे फूल उसने तोड़ दिए और सिर्फ कांटे रह गए, तब उसने उन्हें उस कब्र पर रखा। आज मुझे मेरा बदला लिए हुए पूरा एक साल हो गया है। कैसा लग रहा है तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहकर? मैंने कहा था ना, तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। वो 2 सेकंड के लिए रुका, फिर आगे बोला, लेकिन मुझे अभी भी खुशी नहीं मिल रही। जयदीप लूथरा, तुमने जो किया है उसकी सजा के हकदार सिर्फ तुम नहीं हो, इसकी सजा बाकी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। तुम्हारे लोगों को, तुम्हारी फैमिली को। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। हर एक को उसी तरह से मारूंगा जिस तरह से तुमने उसे मारा था। उसने कब्र पर रखे कांटों को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपने हाथों में नोच दिया। उसके हाथों में कांटे चुभ गए। उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था जो काफी गहराई तक था। मैं अगर खुद को दर्द देता हूं तभी मुझे सुकून मिलता है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, वो इंसान कोल्ड वॉइस में बोला। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाया तो सामने से किसी ने कहा, सर हमें उसका बेटा मिल गया है, वो अब हमारे कब्जे में है। काफी कूद फांद रहा है, उसके पंख फड़फड़ाने से बाज ही नहीं आ रहे। अगर उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं तो उन्हें काट दो, मैं आता हूं, कहकर उसने फोन रखा। कब्र की तरफ उसने अपनी गहरी काली आंखों से देखा, फिर चेहरे पर एक उससे भरा अंदाज दिखाया और अपनी कार की तरफ चला गया।